तआला ने ये चीज़ बयान की कि किस तरीके से इस हदफ को हासिल करना है कि वाकई इंसान को अल्लाह तआला की रज़ा, उसकी मर्ज़ी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो जाए। फरमाया, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास, और अल्लाह तआला चुन लेता है फरिश्तों में से बास पैगाम पहुँचाने वाले और इंसानों में से भी बास को रसूल बनाकर। इन्नल्लाह समीउम बसीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और देखने वाला है। बहुत ही प्यारी आयत, और मुझे तो ऐसे लगा कि एकदम अल्लाह ताला ने इसमें आप लोगों की बात कर दी। अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुनता है। सारे बंदे उसको प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वाकई चुनता है। यहाँ लफ्ज़ यस्तफ़ी को देख लीजिए, स्वात फा या इसका रूट होता है। इसी से लफ्ज़ सफ़िया भी है, हमारे यहाँ मारूफ नाम है। सफाई का लफ्ज़ भी इसी से है, क्योंकि उसमें भी हम चुनते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना, ये इंग्लिश के टू चूज़ के मानों में आता है, चूज़ करना। थोड़ा सा इसका फ़र्क समझें, क्योंकि आयत के आखिरी हिस्से में इज्तबा का लफ्ज़ भी आ रहा है, तो उसको अभी हम यहाँ देख लेंगे। इस्तफ़ा, जैसे नबी सल्लम का लकब भी है ना मुस्तफ़ा, और साथ ही साथ मुज्तबा भी आता है, तो इस्तफ़ा और मुज्तबा का हम फ़र्क देखेंगे। इस्तफ़ा क्या होता है? चूज़ करने के मानों में। मसलन आप देखिए कि आपके सामने किसने 10 फूल पेश किए और कहा इसमें से कोई ले लें। आप अपनी पसंद के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से एक फूल चुन लेते हैं। आपको सफ़ेद रंग अच्छा लगता है, आप सफ़ेद गुलाब ले लेते हैं। सुर्ख अच्छा लगता है, आप सुर्ख लेते हैं। आपके चुनने से ये नहीं मतलब कि दूसरे बुरे हैं, किसी दूसरे को दूसरा रंग अच्छा लगेगा वो लेगा। तो इस्तफ़ा में चीज़ अच्छी होती है, लेकिन जिसको मर्ज़ी मालिक चुन ले। इसी तरह इंसानों में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह किसी को अपना बना लेता है, जैसे अल्लाह ने मूसा को चुना था। वफतन्ना कया मूसा, पढ़ चुके हैं ना सूरत आहा में, क्या मूसा फिर हमने तुझे चुना। एक बंदा बकरियां चरा रहा होता है, अल्लाह उसको अपने दीन के लिए चुन लेता है। एक बंदा अपनी बीवी के लिए आग लेने जाता है, अल्लाह उसको नबूवत के लिए चुनता है। एक बंदा गारे हिरा में बैठा इबादत कर रहा है, अल्लाह उसको चुन लेता है। ये अल्लाह का चॉइस है, जैसे अल्लाह ने आज आपको चुना है। हम भी तो इधर उधर भटक रहे थे ना, अल्लाह ने इस पैगाम के लिए चुन लिया। हर एक को अल्लाह अपने पैगाम देने के लिए नहीं चुनता, इसलिए काबिले रश्क हैं वो लोग जो दुनिया में अल्लाह के कलाम को आम कर रहे हैं। हदीस में आता है कि दो ही लोग काबिले रश्क हैं, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और दोनों हाथों से लुटा रहा है अल्लाह के रास्ते में, और एक वो जिसको इल्म और हिकमत दी और वो लोगों को सिखा रहा है। अल्लाह हमें इन दोनों में ही कर दे। फरिश्तों में भी अल्लाह चुनता है, सारे फरिश्ते अल्लाह के हैं, लेकिन अल्लाह किसी एक को चुनता है, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को चुना। और इसी तरह अल्लाह ताला जो दुनिया में काम होने वाले होते हैं, सारे फरिश्तों को नहीं कहते, उनमें से भी कुछ ख़ास चुने हुए लोग हैं। ऐसे जैसे आपकी इस क्लास में कोई बात कहनी हो तो सबको थोड़ी कही जाती है, किसी एक बंदे को कही जाती है, फिर वो काम आपसे करवा लेता है। तो बिल्कुल ये अल्लाह का चुनाव है। इसके बरक्स इस्तफ़ा का जो लफ्ज़ है ना, ये इंग्लिश के टू चूज़ के माने में था ना, तो इस्तफ़ा का लफ्ज़ सिलेक्ट के मानों में होता है। उसको वहाँ खोलूँगी जाके जहाँ वो आयत आएगी इंशाल्लाह। यहाँ इस्तफ़ा पे चलते हैं कि अल्लाह ताला चुनता है। जो बंदा अल्लाह के दीन से जुड़ता है ना, ये असल में अल्लाह का चुनाव होता है। इससे इस लफ्ज़ इस्तफ़ा पे गौर करते हुए पहली बात तो ये समझ लें कि दूसरों को बुरा नहीं समझना। दूसरों में कोई और ख़ूबी होगी, अल्लाह मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ़ काम कराता है। किसी से मेडिकल के काम करवा लेता है, किसी से इंसान पैसा लगवा लेता है, किसी से हर बंदा अपनी सलाहियतों को लगाता है और अल्लाह का काम चलता है, अल्लाह ताला अपने काम करवा लेता है। लेकिन ये जो काम नबूवत का, के फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह ताला किताब दे, ये सरासर अल्लाह का फ़ैसला है। मक्का वाले अल्लाह के नबी से इस बात पर बड़ी ख़ार खाते थे कि अगर अल्लाह ने चुनना था तो आपको ही चुनना था। बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, वलीद है, और इतने दौलतमंद लोग हैं ताइफ शहर में रहने वाले। कोई एक बड़ा लीडर होता, उसके साथ घन गरज के सफर रिश्ते उतरते, तो उसको अल्लाह नबी बनाता। एक यतीम मक्का को, जिसकी माँ भी कुछ साल के बाद चली गई, उसको अल्लाह ताला चुनता है। तो अल्लाह ने कहा ये मेरी मर्ज़ी है। इसी में जवाब है हर उस इंसान के लिए जिसको अल्लाह का काम करने वाला कोई अच्छा ना लगे और वो उसके लिए हसद महसूस करें, हाय इसको क्यों अल्लाह ने चुना। और बात सफ़ा याद रखिए, दीन का काम करने वाले एक दूसरे से बहुत हसद रखते हैं, कभी ऐसा ना करिएगा। सारी रहमत उठ जाएगी अगर आपने किसी दूसरे दीनदार से हसद किया। उस रब से मांग लीजिए जिसने उसको दिया, वो आपको भी दे देगा। तो लिहाजा अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलम, अल्लाह चुन लेता है फरिश्तों में से पैगाम देने के लिए, व मिनन नासी और लोगों में से भी। तो दो तरह के रसूल होते हैं, एक रसूल इंस और एक रसूल मलिक, दोनों का तस्करा आया। जैसे ये कुरान हम पढ़ रहे हैं, ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। चुनता किसको? ऐसे ही जिसको दिल चाहे। नहीं, इन्नल्लाह समीउम बसीर, वो खूब सुनता है, वो खूब जानता है, उसको पता है मैंने किसको देना है। कौन अब इस दर्जे पे पहुंच चुका है कि मेरे कलाम का वजन उठाए? कभी अल्लाह मुश्किलात में डाल के, कभी मसाइब में डाल के, कभी इल्म के अंदर मेहनत करा के लोगों से ये काम करवाता है। यालमुमा बैना अईदीहिम वमा खल्फहुम, और वो कुछ जानता है जो कुछ इनके आगे है और जो कुछ इनके पीछे है। यानी अल्लाह का चुनाव कोई गलत फहमी पे मबनी नहीं है, उसको लोगों के अंदर का पता होता है। और यकीन करें, आप में से भी जो चाहता है ना कि मैं चुना जाऊँ अल्लाह के लिए, तो वो अपने अंदर बाहर को खालिस कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ इखलास पे होता है। हमारी डिग्रियाँ तो हमारे कागज़ों में होती हैं ना, हमारे डिप्लोमाज और हमारी सनदें तो कौन देखता है? दुनिया वाले तो वो देख के आपको किसी जगह चूज़ कर लेंगे ना। किसी को इमाम मस्जिद रखना है तो उसकी कोई डिग्री देख लेंगे, उसकी किरत सुन लेंगे। अल्लाह का चुनाव इखलास की वजह से होता है, तड़प की वजह से होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के पास इखलास होता है, तड़प नहीं होती। बहुत सारे लोगों में इखलास भी होता है, तड़प भी होता है। तीसरा दर्जा होता है कुर्बानी का। ये तीन लफ्ज़ लिख लें। अल्लाह चुनाव करता है इखलास की बुनियाद पे, अल्लाह चुनाव करता है तड़प की बुनियाद पे। ये दो चीज़ें भी बहुत सारे लोगों में, अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर पे मुसलमानों में आज के दौर में भी ये दो दर्जों वाले लोग बहुत कसरत आले हैं, लेकिन कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, हिजरतें नहीं कर सकते बुराइयों से, बुरे माहौल को नहीं छोड़ सकते, बुरी रस्मात को नहीं छोड़ सकते, बुरी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकते, लिहाजा वो बीच में रह जाते हैं। वइलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे मामले उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। यहाँ पे पैगाम दे दिया उन लोगों को जो अल्लाह के माँ सिवा को पुकारते हैं कि छोड़ो, किनके पीछे लगे हो, क्या कर रहे हो, अल्लाह की तरफ नजरें लगाओ। और अब इसके बाद सूरत के आखिर तक मुआहिदीन को मुखातिब किया जा रहा है। अब तौहीद वालों से खिताब है कि वाकई तुमने एक रब को मान लिया, तुम उसके पीछे लग गए, उसकी तरफ आ गए, तो आओ फिर तुम कुछ काम करो। आप कह सकते हैं कि एक एजेंडा दिया जा रहा है यहाँ उम्मते मुस्लिमा को कामयाब होने का, अच्छे तरीके से काम करने का। किस तरीके से अल्लाह की ज़ात लोगों को दावत देती है? क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। फ़र्क महसूस किया आपने? क्या पहली आयत क्या थी? या अय्युहन्नास। तो पता क्या चला कि तौहीद और शिर्क का फ़र्क इंसान की फितरत में, हर बंदे को पता है। लेकिन अब जो काम करने हैं, पहले इससे मुसलमान हो जाओ। कोई के मुसलमान नहीं होता सिर्फ अगले काम रुकू सजदा अच्छे काम करता रहो, नहीं, पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान तो लाओ, दिल से तो मानो। क्या करो? इरकाओ, रुकू करो, झुको। झुकने का मानी है, लेकिन इस्लाम में रुकू एक ख़ास इबादत का नाम है। और क्या करो? वसजुदू, और झुको, सजदे में चले जाओ, झुक जाओ, आजजी पैदा करो, अपने अंदर नरमी लाओ, अल्लाह के हुक्मों पे झुको। फिर तीसरा काम, वाबुदू रब्बकुम, और अपने रब की इबादत करो। इबादत क्या होती है? जब अल्लाह की इताअत शौक से की जाए तो वो इबादत में ढल जाती है। ये तारीफ लिख लें इबादत की। जब अल्लाह की इताअत शौक से की जाए तो वो काम इबादत बन जाता है। चाहे वो शौक से किसी के लिए खाने ही पका रहे हैं, चाहे शौक से आप घर की सफाई क्यों नहीं कर रहे, चाहे शौक शौक से आप ड्राइविंग क्यों नहीं करके आ रहे, असल चीज़ है शौक। और अगर शौक के बगैर नमाज रोज़ा भी किया जाए तो वो इबादत नहीं रहती। अब करो क्या? यहाँ तक देखिए, अरकान इस्लाम पूरे करने की दावत है, ये मेथडोलॉजी सिखाई जा रही है कि तुम वाकई अल्लाह के काम करना चाहते हो तो पहले अपने फ़राइज़ पूरे करो, नमाज, रुकू, सजूद, इबादत करो, और वफ़लुल खैर, और अब नेकियाँ करो भाग भाग के। हम कहते हैं नमाज रोज़ा तो करते हैं और क्या करें? कई लोगों का ये एक भोला सा सवाल होता है ना, और वो क्या है कि हम बहुत कुछ तो करते हैं लेकिन अब क्या और करें? कहा वफ़लुल खैर। यहाँ वो मिसाल याद रख लें जो आपको पीछे दी गई है कि जब हम गाड़ी में गैस डालते हैं तो उस गैस का क्या इस्तेमाल होना चाहिए? चले दौड़ें, गाड़ी चलाएं, गाड़ी में गैस डालें और चलें ना, तो गैस ख़त्म होती है? नहीं ख़त्म होती ना। और गैस ख़त्म हो फिर डालते जाएं, गाड़ी वहीं खड़ी खड़ी चलाते जाएं, तो क्या होगा? हीटअप हो जाएगी ना। इसी तरह दिन में 5 बार हम नमाज़ों की गैस, पेट्रोल अपने अंदर डालते हैं, एनर्जी मिलती है नमाज़ों से। इन सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। इंसान नमाज पढ़ के इतना ज़्यादा सेचूरेटेड हो चुका होता है कि कहता अल्लाह बस अब जाए नमाज तय करता हूँ, मैं जा रहा हूँ नेकियाँ करने, अभी वापस आता हूँ। वो खूब भाग भाग के नेकियाँ कर रहा है, कभी हुकूकुल इबाद पूरे कर रहा है, हुकूकुल्लाह पूरे कर रहा है, कहीं अल्लाह के रास्ते के काम, कहीं इंसानियत के काम, कहीं मुल्क के लिए काम करते हुए उसकी इंजन में से गैस थोड़ी कम होने लगती है, तो फिर आवाज़ आती है हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह। वो फिर एक पेट्रोल पंप की तरह मस्जिद की तरह भागता है कि आओ मुझे और गैस दो ताकि मैं और नेकियाँ करूँ। जो बंदा नेकियों में नहीं भाग रहा उसकी नमाज बेजान नमाज है। करो क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ, कामयाब हो जाओ। फलाह क्या होती है? अगले पारे के, अगले लेसन के, यानी सूरत मोमिन उनके पहले लफ्ज़ पे हम डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन कामयाब हो जाओ, मुकम्मल कामयाबियाँ, दुनिया की आखरत की कामयाबियाँ तुम्हें मिलेंगी तब जब तुम अल्लाह की तरफ भाग भाग के जाओगे। पीछे अल्लाह ताला ने मुशरिकों की हमाकतों का तذکرہ किया, कैसे अल्लाह को छोड़ के गैरों के आगे जाते हैं। अब अल्लाह अपने बंदों की बंदगी का तذکرہ फरमाते हैं कि जो अल्लाह की शान को देख लेते हैं, जब आसमान की बुलंदियों को देखते हैं, ज़मीन की पस्तियों को देखते हैं, पहाड़ों के सुकून को देखते हैं, दरियाओं की रवानियों को देखते हैं, जो फूलों के खिलने को देखते हैं, जिनको कायनात में हर तरफ अल्लाह ताला की खूबसूरत चीज़ें दिखती हैं, तो फिर वो भी भाग पड़ते हैं, हम भी कुछ करेंगे, अल्लाह हमसे भी करा। सूरज तो इतने काम कर रहा है, मैं कुछ ना करूं? वो तो इतना इंसानियत को फ़ायदा दे रहा है, मैं ना दूं? समंदर कितने काम कर रहे हैं, बादल कितने काम कर रहे हैं, अल्लाह मुझसे भी कुछ करा, मैं भी कोई रहमत की बारिश बन के बरसूँ अपने घर वालों पर, अपने बस्ती वालों पर, अपने मुल्क वालों पर। फिर बंदा है मोमिन वाकई एक कारामद इंसान बनना चाहता है, फिर वो अकेला जन्नत में नहीं जाना चाहता, वो दूसरों के साथ जाना चाहता है, और यहाँ तक उसकी इनफरादी ज़िंदगी पूरी होती है, वो खुद भी रिचुअल्स का आती और अपने घर वालों को। हम कहते हैं काम ख़त्म, छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं, ये कर लिया तुमने, अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया, अब आओ वजाहिदू फिल्लाही हक्का जिहादी, अब सर तोड़ कोशिश करो, अल्लाह की राह में कोशिश करने का जितना हक है, अब बनो इंसानियत के काम के। यहाँ से इंसान की इज्तमाही जिम्मेदारियाँ शुरू होती हैं, कौम होने के नाते, मिल्लत का फ़र्द होने के नाते, उम्मते वसत का एक फ़र्द होने के नाते, उठो काम करो। दूसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने हमें एक ड्यूटी दी थी, आप तो शायद भूल ही गए होंगे, 15 पारे गुजर गए बीच में। एक काम दिया था अल्लाह ने, वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास, लोगों मैंने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया है, मॉडरेट उम्मत हो, न्यूट्रल हो, बैलेंस्ड हो, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है इस्लाम में, एक तरफ झुकने का नाम इस्लाम नहीं है। पहले अपनी ज़ात से शुरू करो, पहले अपनी नमाज़ें ठीक करो, पहले अपने रुकू ठीक करो, पहले ख़ुद नेकियां करो, इनफरादी कर चुके हो, अब तुम्हारा घर साफ़ है, गुनाहों से पाक है, चलो अब अपनी गली के घरों को साफ़ करो। साफ़ हो गए हैं मोहल्ला, इलाका, शहर, और फिर मुल्क को करते करते तुम दुनिया के लिए एक रहमत का पैगाम बनो, निकल पड़ो, सर तोड़ कोशिशें करो। यहाँ लफ्ज़ जिहाद आया 2 दफ़ा आया, पीछे इस पे बात हो गई, यहाँ दोबारा इसका खुलासा बता देती हूँ। कोई ये ना समझे कि अल्लाह कह रहा है तलवारें पकड़ के निकल जाओ, गोलियाँ बरसाओ, न जाने किसने जिहाद का ये मतलब समझा। जिहाद के 3 मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, किस्में कह लें, दर्जे कह लें। यह लफ्ज़ जहादा से है, मेहनत करना, कोशिश करना, दुश्मन का मुकाबला करने में हर मुमकिन कुव्वत सर्फ करना, इसको जिहाद कहते हैं, मुजाहिदा। पहली किस्म इसकी होती है मुजाहिदतुल अदुव्व ज़ाहिर, ज़ाहरी दुश्मन से जिहाद, यानी सामने दुश्मन आ गया जो मारने आया है, अब बैठे रहोगे मार खाओगे? नहीं, उठो फिर जैसे हालात हैं वैसा मामला करो। दूसरा होता है मुजाहिदा शैतान के साथ, शैतान के मुकाबले में जिहाद करो। ये जो टेम्पटेशंस आती है ना गुनाहों की, ये जो हर वक्त अंदर से उबाल उठते हैं ना, एकदम आइडिया और ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ों को प्रमोट करने की, उसको रोको। और तीसरा होता है मुजाहिदतुन नफ्स, नफ्स के साथ जिहाद करो। खिलाफ पहला मुजाहिदा हमेशा अपने नफ्स के साथ होता है, आप अपने नफ्स को उठाते हैं, उठो नमाज पढ़ो, फजर का वक्त है, नींद छोड़ो, ये है पहला जिहाद। फिर शैतान आता है, नहीं 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 सो जाओ, अभी रात बड़ी लंबी है, अभी तो अजान हुई है, और अभी वो सारे कर लेना वुजू, फिर मैं उठता हूँ। और शुक्र करते हैं घर में एक ही बाथरूम है, उसी वक्त खुशी होती है कि मेरी बारी ना ही आए। कभी किसी को पहल का मौका नहीं देंगे, फजर के वजू पे कहेंगे पहले आप करके आए फिर मैं आऊंगी, नहीं, पहला ये मुजाहिदा है। फिर शैतान को चुप करो, खबरदार, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उठ पढ़ो। फिर जब नमाज पढ़ लोगे तो तुम हर तरह के दुश्मन से लड़ने को तैयार होगे। और जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज वक्त पे नहीं पढ़ता, जो फजर पे अजान सुन के मस्जिद नहीं जाता, वो कल दुश्मन के आने की खबर सुन के सरहद पे भी नहीं जाएगा। खालिद यासिन की बात आपको पीछे सुना चुकी हूँ, एक लेक्चर के एंड पे किसी ने उनसे क्वेश्चन किया कि उम्मत मुस्लिमा की हालत कब बदलेगी, हर तरफ मुसलमान पिस रहे हैं। तो उन्होंने वो सवाल की पर्ची दिखाई और कहा कि ये सवाल किस ब्रदर ने दिया है, वो इसका जवाब लेने के लिए कल फजर की नमाज पे मुझे फला मस्जिद में मिले। कहने लगे ये है जवाब, जब मुसलमान फजर की नमाज जमात से पढ़ेंगे ना, तब मुसलमानों की हालत बदलेगी। वजाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादिही, क्यों करें इतने काम, हमें तो आराम अच्छा लगता है, हम तो देख रहे हैं लोग ऐश कर रहे हैं, ई ड्रिंक बी मैरी, मौज मस्ती, खाओ पियो ऐश करो, हम क्यों करें? का इसलिए कि हुवज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया, तुम चुने हुए लोगो। पीछे था यस्तफी, यहाँ है यजतबी, दोनों का फ़र्क अब आपके सामने आ जाएगा। इज्तबा का जो लफ्ज़ होता है ना, इसके अंदर सिलेक्शन का मानी है। अब आप इमेजिन करें सिलेक्ट कौन होता है, 10 कैंडिडेट थे, एक सिलेक्ट हुआ, इसमें उस कैंडिडेट की अफादियत है। यस्तफी में चूज़ करने वाले की चॉइस है, 10 प्रिंट्स में से आपको एक प्रिंट पसंद आ गया, लेकिन ये नहीं ज़रूरी कि दूसरे बुरे हैं, वो कोई और ले जाएगा। लेकिन यजतबी में तुम्हें अपना आप मनवाना पड़ेगा। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि हुआ यस्तफीकुम या तुमको यस्तफाकुम, उम्मत मुस्लिमा को इस एक लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने पैगाम दे दिया कि तुम चुने हुए तब हो जब तुम अपने अंदर कोई सलाहियत पैदा करो। और अगर यहूद की तरह तुमने भी कहा वी आर चोजन पीपल नहनु हिब्बाहु, तो फिर जो उनके साथ हुआ अगर तुम्हारे साथ भी हो गया तो रोना नहीं, तुमको अल्लाह ने चुन लिया। कैसे चुना? तुम्हें आखिरी नबी की उम्मत से बनाया, तुम्हें इस दुनिया में आखिर में भेजा और जन्नत में सबसे पहले लेके जाएगा। तुम्हें इस दुनिया में बहुत थोड़ी उम्र दी, मुश्किलात मुशक्कतों वाली ज़िंदगी कम दी, लेकिन तुम जन्नत में जल्दी जाओगे। तुम्हें अल्लाह ने सिर्फ असर से मगरिब तक का वक्त दिया काम करने को, तुम्हें पे ज़्यादा मिल रही है। एक हदीस का खुलासा है, एक शख्स था उसने काम करवाना था, उसने मजदूरों को हायर किया, वो कई घंटे काम करते रहे, फिर उसने उनको मजदूरी दी, वो थक के चले गए, काम ख़त्म ना हुआ। उसने दूसरे ग्रोह को बुलाया, उन्हें कहा देखो मैं उससे थोड़े से और पैसे दे दूंगा, ज़रा काम कर दो। फिर उन्होंने जोहर से लेकर असर तक का काम किया, काम फिर भी ख़त्म ना हुआ, अब मजदूर तो चले गए। फिर इसने कुछ और को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुम्हें डबल पैसे देता हूँ कि मेरा काम कर दो। फिर वो सिर्फ असर से मगरिब तक काम करके गए। फरमाया पहला ग्रोह यहूद का था, लंबा अरसा दुनिया में रहे, काम नहीं करके गए अपना, अल्लाह ने कहा निकलो भागो। नसारा को बुलाया, वो उनकी निस्बतन कम टाइम रहे इस दुनिया में, फिर काम पूरा नहीं कर गए, ख्वाहिशों में चले गए। फिर अल्लाह ने मुसलमानों को बुलाया, उम्मत मुस्लिमा को आओ, सिर्फ असर से मगरिब का टाइम है, और आप जानते कितना तंग होता है ये वक्त। कहा तुम तो खुशकिस्मत लोग हो, थोड़ा अरसा दुनिया में रहे हो लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दर्जे बुलंद कर दिए। हुवज्तबाकुम, उसने तुमको चुन लिया, अपने कामों के लिए चुन लिया। और डरते क्यों हो? वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, उसने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी। हक़ की पासबानी, हक़ की नशरोशात, हक़ बात को आगे फैलाना, पैगाम हक़ को बढ़ाना, शहादत हक़ की गवाहियाँ देना, ये कोई मुश्किल थोड़ी है। चीखें क्यों मारते हो? कोई मुश्किल नहीं है, दीन आसानियों का दीन है, कोई कांटा नहीं है, हरज कांटे को भी कहते हैं। तुम्हें क्यों दीन पे अमल करना कांटा लगता है? तुम क्या समझते हो कि दीन पे अमल करने से जान निकल जाएगी, कामयाब नहीं रहूँगा? नहीं, तुम्हारा दीन बड़ा आसान दीन है। अल्लाह ने तुम्हें कितनी सहूलतें दी, यहूद ने इतनी पाबंदियाँ लगाईं कि दीन खुश किताब बन गया, निभा ना सके, ख़यानतें शुरू कर दी उनके उलमा ने। नसारा इतने बहके ख्वाहिशात के अंदर के दीन को उन्होंने लव 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 का नाम दे के सब कुछ ही जायज़ कर लिया, वो भी ना बने। तुम्हारा दीन देखो मॉडरेट है, नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लो, इशारों से पढ़ लो, वजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लो। सोचो अल्लाह ने तुम्हें कितनी सहूलतें दी हैं, इतना प्यारा दीन है तुम्हारा, कोई रिजिड दीन नहीं है, कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम का ही तो दीन है, उसी की कंटिन्यूएशन है, कोई नया दीन नहीं। तुम्हारे बाप जिनके अजमत के गीत तुम गाते हो, मक्का वाले बड़ा नाज करते थे कि हम हजरत इब्राहिम की नस्ल से हैं, का उन्हीं का दीन है। उनकी जिंदगी को मिसाल बनाओ, कैसे शिर्क से कटी हुई तौहीद से जुड़ी हुई जिंदगी थी। फख्र तो करते हो बुजुर्गों पे, उन जैसे काम तो करके देखो। और बाकी रह गई बात, तुम हो कौन? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, तुम मुसलमान हो, तुम इसके अलावा और कुछ नहीं हो। तुम्हें उसने सुन्नी, वहाबी, ब्रेलवी, हनफी, शाफई, मालकी ये नहीं कहा, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम क्यों दूसरे नामों पे जाते हो? तुम क्यों सोचते हो कि जब तक इस्लाम और मुसलमान के आगे कोई दो चार लफ्ज़ ना लगें तब तक बात नहीं बनेगी? नहीं, तुम्हारा नाम मुसलमान है अभी, नहीं मिन कब्लु वफी हाजा, अब भी तुम मुसलमान हो, यानी इस नबी में की उम्मत में होते हुए, और इससे पहले सारे अंबिया के फॉलोअर्स मुसलमान थे। पीछे हम इस पे बात कर चुके, हर दौर के वो लोग जो अपने नबी की इताअत करते थे वो मुसलमान थे। आप कह सकते हैं कि इस्लाम पहला नहीं आखिरी मजहब है, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हर दौर में एक ही बात थी मुसलमान। और पीछे आपको एक जगह इसके सारे रेफरेंस लिखा चुकी हूँ कि हर नबी के नाम के साथ उसकी कौम के साथ मुसलमान का लफ्ज़ आता है। आज हमारी तसल्ली नहीं होती जब तक कोई हमारा मसलक ना हो। आज कितने लोग हैं जो मसलक का नाम लेके सच्चे कुरान को छोड़ देते हैं, है ना? आंसू बहाने वाली बात, रोने वाली का मुकाम है कि कुरान तो सब मानते हो फिर उसको नहीं पढ़ते सिर्फ इसलिए कि मेरा मसलक क्या है और उसका मसलक क्या है। अपना नाम मुसलमान रखो। क्यों करें ये काम? इसलिए कि लियकून और रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो जाए। क्या गवाही देगा कि अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ये सारा दिन फिल्में देखते थे, ये रातों को मूवीज देखते थे, ये वीकेंड्स पे क्लबों में जाते थे, इनके हाथों में शराबें होती थी, बस ये बच्चियों की शादी पे मेहंदी उबटन तेल और ये करते थे, आप प्लीज़ इनको माफ़ कर दें। ये गवाही देगा अल्लाह के सामने रसूल, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ऐसे मुसलमानों की गवाही देगा अल्लाह। ये हर वक्त लड़ते रहते थे, कोई बात नहीं आप इनको माफ़ कर दें अल्लाह। ये बहुत तफरकेबाजियाँ करते थे, ये एक दूसरे की मस्जिदों पर कुफर के फतवे लगाते थे, प्लीज़ आप इनको माफ़ कर दें। ये गवाही देगा नबी। आप देखिए किसी का रिश्ता कराने जाएं और कहें वैसे है बड़ा शराबी लड़का लेकिन कोई बात नहीं, अब दे देना लड़की, इसको अच्छा हो जाएगा, नहीं रात को घर नहीं आता वैसे आएगा शादी के बाद, अब रिश्ता कर ले। वो कहेंगे इसको तो छोड़ो, पहले तुम अपनी अकल का इलाज कराओ। कभी सोचें तो सही, जिस नबी की सिफारिश की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, क्या उसके बारे में ये सोचे बैठे हैं कि वो अल्लाह के सामने जाके ऐसी कौम की सिफारिश करेगा? नहीं, व तकूनु शुहदा अलन्नास, जब तुम लोगों पर गवाह बनोगे, तुम लोगों की गवाहियां दोगे, फिर नबी तुम्हारी गवाही देगा कि अल्लाह ये इंसानियत के लिए निकले थे, ये मुसलमान होने का हक अदा करना चाहते थे, ये वो काम करना चाहते थे जो नबियों ने किया, ये शहादत हक की गवाहियां देते थे, इन्होंने घरों के आराम छोड़े, इन्होंने आसाइशें छोड़ी, इन्होंने नींद छोड़ी, क्योंकि ये दूसरों को बचाना चाहते थे, खुद तो पहले बच गए थे अब दूसरों को बचाना चाहते थे, अल्लाह तो इनको माफ़ कर। ऐसी टूटी फूटी कोशिशों पे भी अल्लाह ताला फिर कहेगा अच्छा ये ऐसे लोग थे, चलो आता तो नहीं था इनको काम करना, चलो कोशिश तो की, आ जाओ ले जाओ। लेकिन ये सब करने के लिए करना क्या है? फाकीमुस्सला तवा तुस्सका तवा तसीमु बिल्ला, ये क्या बात हुई? नमाज तुमने पहले पढ़ ली थी फिर आ गई। बड़ा खूबसूरत इधर एक नुक्ता है, अब देखिएगा, शुरू में सूरत में वर्कौ वस्जुदु आ चुका था और अब फिर कह दिया फाकीमुस्सला। असल में ये जो फा है ना, ये बड़ी कीमती है ग्रामर की रोशनी में, जो मैं इधर नहीं बात करूंगी। फा जो होती है ना, ये कुछ अरसे बाद के लिए आती है, जैसे सो के मानों में इंग्लिश में कहते हैं ना, एक लफ्ज़ होता है सुम्मा और एक होता है फा। अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों को काम करने का तरीका बताया है कि कोई बात नहीं, पहले जो नमाज़ें पढ़ी थी वो तो बस ऐसे ही पढ़ते थे ना, अपनी ज़ात के लिए पढ़ी थी, पहली नमाज़ें तो तुम्हें खुद को जन्नत दिलवाने के लिए थी ना, अब तुम वो इबादत करो रूहानी तौर पे अल्लाह का कुर्ब पाओ कि जो तुम्हें अल्लाह के दीन का काम करने के काबिल कर दे। क्योंकि जब तक तुम अकीमुस्सला तवातुज़्ज़का नहीं करोगे, तुम्हारी बात में कोई असर ही नहीं होगा, तुम तो झंडा नहीं उठा सकोगे इस्लाम के नाम का, क्योंकि तुमने तो गिटार उठाया हुआ है। आज हम कहते हैं हमारी नस्लें गिटार उठा उठा के गा गा के मुल्क को बचाएंगी, वो नाचेंगे गाएंगे, फिर देखना उनको अल्लाह कितना प्यारा मुकाम देगा। नहीं, फ़ाकीमुस्सलाह, अपनी नस्लों को नमाजी बनाओ। आतुज़्ज़का, वो माल जो सोने चांदी की सूरत में छुपा के रखा हुआ है, वो माल जो तुमने अपनी ज़ात के लिए रखा हुआ है, निकालो उसको और अल्लाह के हुक्मों पे लगाओ। और वातसिमू बिल्ला, ये है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी का जवाब। जो बेकदरे लोग होते हैं ना, वो एहतसाम बिल्ला नहीं कर पाते। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी ज़कातें तुम्हें अल्लाह से जोड़ने वाली हों। हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं पिछले कितने सालों से, एहतसाम बिल्ला नहीं हुआ। जब तक उम्मत मुस्लिमा अल्लाह को मजबूत नहीं पकड़ती, तब तक वो अल्लाह के काम कर ही नहीं सकती। समझ ही नहीं आएगी लोगों को ये काम करें क्यों, क्योंकि एहतसाम बिल्ला नहीं है। क्यों पकड़े अल्लाह को? इसलिए कि हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है, कारसाज है। उसी ने तुम्हारी बिगड़ियाँ बनानी है, उसी ने तुम्हारे बच्चों के रिश्ते कराने हैं, उसी ने तुम्हारे शौहरों को सेहत देनी है, उसी ने तुम्हारे घर पे ऑफ कराने हैं। वो मौला है तुम्हारा। फने मल मौला वने मन नसीर, बस वो बेहतरीन कारसाज और बेहतरीन मदद करने वाला है। उस पे नज़रें लगाओ, शहवत को छोड़ो, शहादत की तरफ आओ। तुम इस दुनिया में ऐसी ज़िंदगी बसर करो कि अल्लाह के नाम को बुलंद करते जाओ। अल्लाह तुम्हारी मौत को मौत नहीं शहादत कहेगा। तुम मर के भी मरोगे नहीं, तुम्हारे बाद वो मिशन ज़िंदा रहेगा। तुम मरोगे चार लोग रोएंगे, तुम अल्लाह के बंदे अल्लाह के पैगंबर बन के मरोगे, लाखों रोएंगे तुम्हारे मरने पे। तुम्हारी ज़मीन के घर के चार टुकड़े नहीं रोएंगे, ज़मीन का वो चप्पा चप्पा रोएगा तुम्हारी मौत पे, जहाँ बैठ के तुम शहादत हक़ की गवाहियाँ दिया करते थे। अगर उम्मत मुस्लिमा इस पैकेज को ले ले, अडॉप्ट कर ले, मुसलमान आज फिर वर्ल्ड लीडर्स बन सकते हैं। अल्लाह ने इस सूरत के आखिर में हमें एक लीडरशिप पैकेज ऑफ़र किया है। अंदाज़ा कीजिए कि यह सूरत बरज़खी थी, मक्का और मदीना के बीच के सफ़र में हुई। असल में यहाँ आप नबी सल्लम और हिजरत करके जाने वाले सहाबा को पैकेज दिया जा रहा है। क्या आप मक्का से चले जा रहे हो, मदीना के रास्ते खुल गए, काम करो, देखना 10 साल के अंदर अंदर तुम कहाँ पहुँच जाओगे। हर कदम पहला जो होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि मंजिल नहीं दिख रही होती, लेकिन हर बढ़ता हुआ कदम मंजिल के करीब करता है। और तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमान इस शहादत हक की जिम्मेदारियों को अंजाम देते रहे, लोग परवानों की तरह शम्मा इस्लाम पर निसार होते रहे। एक मर्द हक किसी जुल्मत कदे में पहुंच जाता था ना, तो वहां नूर की किरणें भरती थी, वहाँ इस तरह रोशनी आती थी, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग अपने बाप दादा के नज़रियात और अकायद को छोड़कर इस्लाम की तरफ आए। लेकिन जब से हमारी नस्बतें इस्लाम की बजाय फ़िरकों से बन गई, अल्लाह ने हमसे वो चिराग छीन लिए। अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को दोबारा बताया कि देखो, आपको पता है कि वो हिस्से जो सुल्तान महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन गौरी, इनकी फतूहात से फतह नहीं हुए थे, वो तबलीग के ज़रिए से फतह हो गए। आप तारीख पढ़ते हैं ना कभी, तो उसमें आपको बड़े बड़े रूलर्स के नाम आते हैं, उन्होंने इधर हमले किए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन काम तबलीग के ज़रिए पूरा हुआ। आप कह सकते हैं बरेसगीर पाको हिंद की तारीख में जितना काम सच्चे दिल से तबलीग करने वालों, लोगों को इस्लाम देने वालों की कोशिशों से हुआ, उतना हुक्मरानों से नहीं हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपना मुहासबा करने वाला बना दे। ये आखिरी जो दुआएं हैं, इस पे एक लेक्चर भी है दावा सीडी में, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं, लेकिन कुछ इसी तरह से होगा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियाँ। आप सुने तो उसमें ये आखिरी आयत पे हमने बहुत डिटेल से बात की है। अल्लाह ताला हक अदा करवाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।